एक नवंबर दिन शुक्रवार कार्यक्रम दिन भर नमस्कार। झारखंड में 30 नवंबर से 5 चरणों में होंगे विधानसभा चुनाव, 23 दिसंबर को नतीजे।
डेट ऑफ पोल 30 नवंबर, डेट ऑफ काउंटिंग 23 दिसंबर।
पाकिस्तान में फ्रीडम मार्च, इमरान खान को मिली चुनौती।
ये हुकूमत जाली हुकूमत है और गलत एजेंडा लेकर इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर आई है, इंशाल्लाह इसके इस अजम को हम नेस्तो नाबूद कर देंगे।
विवेचना में सुनिए, 70 सालों में पास रहकर भी कितने दूर हैं भारत और पाकिस्तान।
भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि नहीं, ये फंड्स हम रिलीज नहीं करेंगे। इसके खिलाफ महात्मा गांधी एक फास्ट पर है, ये फंड्स रिलीज करना आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन है।
कार्यक्रम में खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार कुलदीप मिश्र से। चुनाव आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 81 सीटों वाली विधानसभा में 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक 5 चरणों में चुनाव होंगे। वहीं वोटों की गिनती 23 दिसंबर को होगी। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी को समाप्त हो रहा है। उच्चतम न्यायालय की ओर से गठित पैनल ने दिल्ली और NCR में खतरनाक प्रदूषण को देखते हुए हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान किया है। साथ ही 5 नवंबर तक सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण यानी EPCA ने राजधानी के प्रदूषण को बेहद गंभीर श्रेणी का बताया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पराली जलाए जाने की वजह से भारतीय राजधानी गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल भारत दौरे पर आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी अगवानी की। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए। इनमें उड्डयन और अंतरिक्ष समेत कई क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और जर्मनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कौशल और शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में साथ काम कर सकते हैं। मोदी ने यह भी कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपने द्विपक्षीय रिश्तों और सहयोग को और भी ज़्यादा मजबूत करेगा। एक वरिष्ठ चीनी अधिकारी ने संकेत दिए हैं कि चीन हांगकांग पर शासन के अपने तरीके में कुछ बदलाव कर सकता है। हांगकांग में कई महीनों से लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। चीनी अधिकारी शेन चुनयायो ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव और दूसरे अधिकारियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी के तरीके में सुधार पर चर्चा की है। शेन चुनयायो ने कहा,
चीफ एग्जीक्यूटिव और अहम पदाधिकारियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी के तरीके में सुधार लाने की बात है। साथ ही नेशनल पीपल कांग्रेस की स्थायी समिति की ओर से मूल कानून की व्याख्या के तरीके और संविधान द्वारा केंद्र सरकार को मिली विभिन्न शक्तियों के प्रयोग में भी सुधार पर चर्चा हुई है। ये थे वरिष्ठ चीनी अधिकारी शेन चुनयायो के शब्द। ब्रेक्सिट पार्टी के अध्यक्ष ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ से किए गए समझौते को रद्द करने की अपील की है। अगले महीने होने वाले आम चुनावों के लिए अपने अभियान की शुरुआत करते हुए नाइजल फैराज ने कहा कि बोरिस जॉनसन के समझौते के अमल में आने के बाद ब्रिटेन स्वतंत्र और स्वशासन वाला देश नहीं रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री उस समझौते को रद्द करते हैं तो वे चुनाव में उनके साथ गठबंधन करने को तैयार हैं, और ऐसा न होने की सूरत में उन्होंने इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। ब्रेक्सिट समझौते का जिक्र करते हुए नाइजल फैराज ने कहा,
Quite often people buy used cars and the bonnet looks quite shiny and it all looks very attractive.
अक्सर लोग पुरानी कारें खरीदते हैं और बहुत चमकदार दिखती हैं, लेकिन वे जल्दी ख़राब हो जाती हैं और अंततः निराश ही करती हैं, और बोरिस जॉनसन भी यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये थे ब्रेक्सिट पार्टी के नेता नाइजल फैराज के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। पाकिस्तान में दसियों हजार प्रदर्शनकारी मौलाना फजलुर रहमान के नेतृत्व में राजधानी इस्लामाबाद में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग प्रधानमंत्री इमरान खान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। विपक्षी दलों के नेता भी उनके मंच पर भाषण दे रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का आरोप है कि इमरान खान की सरकार अवैध है और उसे सेना सत्ता में लेकर आई है। प्रदर्शनों की वजह से शहर के कुछ हिस्सों में स्कूल बंद हैं और जन परिवहन भी प्रभावित हुआ है। वियतनाम पुलिस ने कहा है कि उन्होंने ब्रिटेन में पिछले हफ्ते लॉरी में मिले 39 शवों के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इन शवों को लंदन के पूर्वी छोर पर एक लॉरी से बरामद किया गया था। उत्तरी आयरलैंड का निवासी लॉरी ड्राइवर अभी जेल में है और उस पर नरहत्या और मानव तस्करी के आरोप हैं। नवंबर में उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। बांग्लादेश में नए ट्रैफिक नियम लागू हो गए हैं जिनका मकसद हादसों को काबू करना है। नए कानून के मुताबिक अगर कोई ड्राइवर किसी को चोट पहुंचाने या सड़क हादसे में किसी की मौत का कारण बनता है तो उसे 5 साल की सजा हो सकती है। मजदूर संघों का कहना है कि यह सजा काफी सख्त है और इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत। रेडियो के साथ साथ आप इस कार्यक्रम को bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। महाराष्ट्र और हरियाणा में तो विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए और परिणाम भी आ गए। अब बारी है एक और राज्य में चुनाव की, वो है झारखंड। चुनाव आयोग ने कहा है कि 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड में 5 चरणों में चुनाव होंगे। 23 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी और परिणाम सामने आ जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा,
फर्स्ट फेज 13 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, डेट ऑफ पोल 30 नवंबर, डेट ऑफ काउंटिंग 23 दिसंबर, फेज टू।
सुनील अरोड़ा कह रहे थे कि पहले चरण में 13 विधानसभा क्षेत्रों में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, दूसरे चरण में 7 दिसंबर को मतदान होगा, उसके बाद तीसरे चरण में 12 दिसंबर को वोटिंग होगी, चौथे चरण में 16 दिसंबर को चुनाव होंगे और पांचवें चरण में 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 दिसंबर को मतों की गणना होगी। तो झारखंड विधानसभा चुनावों का शेड्यूल सामने है। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है नवीन नेगी। नवीन नेगी, आपने चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा है और सुना है, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कहीं और किस तरह से चुनाव कार्यक्रम होगा ये?
जी मोहन जी, सबसे पहले तो चुनाव आयुक्त ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बताया कि झारखंड में आज से, जब से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगी तब से आचार संहिता जो है प्रभाव में आ गई है और पहले चरण के मतदान के लिए जो नामांकन होगा वो 6 नवंबर से भरा जा सकेगा, जबकि अंतिम चरण के मतदान के लिए 26 नवंबर से नामांकन भरा जा सकेगा। इसके साथ ही सुनील अरोड़ा जो कि चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में कुल 19 जिले नक्सल प्रभावित हैं, जिनमें से 13 जिले अत्यधिक संवेदनशील बताए गए हैं। और उन्होंने कहा कि 81 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में 65 सीटें जो है नक्सल प्रभावित इलाके में आती हैं और यही वजह है कि यहाँ पे 5 चरणों में मतदान करवाया जा रहा है।
और चुनाव आयोग ने, मैं भी इस कॉन्फ्रेंस को देख रहा था, उन्होंने कहा कि पिछली बार की तरह और 2014 की तरह इस बार भी 5 चरणों में चुनाव होंगे।
जी बिल्कुल, पिछली बार भी 5 चरणों में करवाए गए थे और इस वजह से, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका बहुत ज़्यादा है, 65 सीटें जो है उस इलाके में आती हैं, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि 5 चरणों में चुनाव करवाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है करवाए जा रहे हैं और वहाँ पर जो है अलग अलग सेना के जो दल हैं उनको भेजा, सुरक्षा बलों को भेजा जा रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया नवीन नेगी। और अब कार्यक्रम में, जबकि राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है, क्या मुद्दे हैं और राज्य की राजनीति में क्या हलचल है, सीधे चलते हैं रांची प्रभात खबर अखबार के प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी के पास। आशुतोष जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनावों के बड़े मुद्दे क्या हैं, क्योंकि झारखंड से लिंचिंग के मामले सामने आते रहे, डायन के मामले तमाम सामने आते रहे, क्या बड़े मुद्दे हैं इस बार चुनाव में?
मोहनलाल जी, इस बार चुनाव में जो मुझे लगता है कि सरकार, भाजपा की रघुवर दास के नेतृत्व वाली सरकार है, वो अपने कामों के साथ में जनता के पास जाएगी और विपक्ष का कहना है कि वो सरकार पूरी तरह इन कार्यों में असफल रही है। इसके अलावा बीजेपी मुझे लगता है कि राष्ट्रीय मुद्दों को भी यहाँ पर उठाएगी, तो इस तरह से ये मुद्दे मुझे लगता है कि ज्यादा प्रभावी रहेंगे। इसके अलावा कुछ जो जमीन के मुद्दा है, एक जो झारखंड में हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है, वो भी बीच बीच में उभर कर आएगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल चुनाव जो है भावनात्मक मुद्दों पर ज्यादा लड़े जाते हैं और उसमें शिक्षा और इस तरह के जो बेरोजगारी है या स्वास्थ्य है, उस तरह के मुद्दे अक्सर नहीं उठ पाते।
मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो बुनियादी मुद्दे हैं, रोजगार का सवाल है, पानी का सवाल है, विकास का सवाल है, ये मुद्दे एक तरफ छूट जाते हैं और जैसा कि हमने पिछले चुनावों में देखा, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे जैसे धारा 370 या फिर बड़े मुद्दे, वो प्रभावी हो जाते हैं।
देखिए, झारखंड सरकार ने यहाँ पर काफी सारे कार्य भी वैसे किए हैं, जिसमें आप सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी ने उज्ज्वला गैस योजना जैसी योजनाएं की हैं, किसानों को डायरेक्ट ट्रांसफर किया है, आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं भी चलाई हैं। उसका वो अपने इस मैसेज को लोगों तक किस तरह से पहुंचाते हैं और लोग उसको किस तरह से लेते हैं, वोट में उसको क्या कन्वर्ट कर पाते हैं, ये एक बीजेपी के सामने चुनौती होगी। और विपक्ष बहुत सारी और अन्य जो मुद्दे हैं विकास के, की जो वादे किए थे वो नहीं कर पाए हैं, तो उनको उठाएगा। तो इस तरह से ये एक दूसरे को चुनौती देंगे और उसमें देखना होगा कि मतदाता किस तरफ
जी, और अभी तो चुनाव प्रचार, अभी तो चुनाव प्रचार शुरू होगा और तब देखना होगा कि कौन से मुद्दे उछलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष चतुर्वेदी जी आपका, आप रांची में प्रभात खबर अखबार के प्रधान संपादक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
बीबीसी इंडिया बोल।
क्या मोदी सरकार सरदार पटेल की विरासत को हथियाना चाह रही है या फिर उन्हें इतिहास में उच्च स्थान दिलाने का प्रयास है? इस बार इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर। कार्यक्रम में अपने विचार रखने के लिए इस शनिवार शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर। 27 अक्टूबर को जमीयत उलेमा इस्लाम एफ द्वारा शुरू किया गया फ्रीडम मार्च इस्लामाबाद में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी, पीपीपी के वरिष्ठ नेता फरातुल्ला बाबर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता एहसान इकबाल ने इस मार्च में हिस्सा लेने वाली भारी भीड़ को संबोधित किया है। जमीयत उलेमा इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुल उर रहमान के भाषण से पहले विपक्षी नेता शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने कुछ देर पहले इमरान खान को चुनौती दी। अब से थोड़ी देर पहले मौलाना फजल उर रहमान ने कहा,
नया पाकिस्तान किसका पाकिस्तान? कहते हैं ये मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। मजहबी कार्ड अगर आईन का मसला है और आईन उसका जिक्र करता है, आईन उसका तहफ्फुज़ करता है, मैं आईन की बात करता हूँ, तुम कौन होते हो मुझे पाकिस्तानी आईन के तहत तहफ्फुज़ दिए हुए इस्लामी दफात को तहफ्फुज़ देने के लिए बात करने को।
ये थे मौलाना फजलुर रहमान। सुनिए कुछ आवाजें जो कि इस फ्रीडम मार्च का हिस्सा बनी है।
देखो गरीब आदमी तरस रहा है, मर रहा है और चिल्ला रहा है। कहा था कि मैं मकान दूंगा, ये करूंगा, रोजगार दूंगा। रोजगार तो वैसे भी ख़त्म कर दिया है। हर एक बंदे से पूछो, अगर डॉक्टर वगैरह हैं उनसे पूछो, जिस माक में से भी ताल्लुक रखते हैं, अगर मास्टर हैं, स्कूल वाले बच्चे हैं, जो भी हैं, इसने तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया और आवाम को तो वैसे ही मार दिया।
ये इमरान खान ने कौम के साथ जो वादा किए थे सब कुछ अधूरा निकले, तो इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और मीशत को तबाह कर दिया। तो इंशाल्लाह हमारे कायद ने हमें हुक्म दिया है तो उसी के हुक्म की तामील करने के लिए इधर आया है। तो उसका हुकूमत और इमरान खान को इस्तीफ़ा लेकर फिर वापस जाएंगे इंशाल्लाह।
कि ये हुकूमत जो है एक जाली हुकूमत है और गलत एजेंडा लेकर इस मुल्क के पाकिस्तान के जमहूरी पाकिस्तान के अंदर आई है। इंशाल्लाह इसके इस अजम को हम नेस्त व नाबूद कर देंगे।
ये आवाज़ें आप सुन रहे थे जो कि इस फ्रीडम मार्च का हिस्सा बनी है। और अब से कुछ देर पहले वहाँ पर मौलाना फजल उर रहमान ने भीड़ को संबोधित किया और इन सब की मांग है कि इमरान खान सरकार को तुरंत हटाया जाना चाहिए। कराची से रावलपिंडी के बीच चलने वाली पाकिस्तान रेलवे की जिस तेजगाम एक्सप्रेस में कल आग लगी थी उसमें मारे गए लोगों की पहचान का काम अभी भी चल रहा है। हादसे में कम से कम 70 से ज़्यादा लोगों की जाने गई। घायलों का शेख जायद अस्पताल के बर्न सेंटर में इलाज चल रहा है। रावलपिंडी की ओर जाते समय लियाकतपुर में तेजगाम एक्सप्रेस की 3 बोगियों में आग लगी थी। बीबीसी उर्दू संवाददाता फरहत जावेद पहुंची रहीम यार खान के उस अस्पताल में जहां मृतकों के परिजन शवों को लेने की जद्दोजहद में हैं।
शेख जायद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के इस सर्द खाने में इस वक्त 50 से ज्यादा डेड बॉडीज मौजूद हैं, जिनमें से कुछ की सैंपलिंग हो चुकी है जबकि डीएनए टेस्ट के लिए बाकी जो मैयतें यहां पर लाई गई हैं उनकी सैंपलिंग का अमल जो है वो जारी है। लेकिन इसके साथ साथ यहीं दर्जनों लवाहिकीन हैं इन अफराद के जो कि कल इस हादसे में हलाक हुए, जो कि यहाँ मौजूद हैं और इस इंतज़ार में हैं कि उनको उनके जो अजीज़ इस हादसे का शिकार हुए हैं उनके बारे में कुछ तफसील मिल सके और वो उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो यहाँ से अपने इलाकों में लेकर जा सकें। इनमें ज़्यादा तादाद जो है वो मीरपुर खास से आए लोगों की है जो कि कल रात से ही यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी भी सैम्पलिंग की कलेक्शन जो है उसका अमल जारी है। इनमें से कुछ लवाहिकीन से हमने बात की है और उनसे ये जानने की कोशिश की कि उनको इस वक्त किन मुश्किलात का सामना है।
8 बजे घर से निकले, इधर आए तो बोलो वो तो रिपोर्ट वाले तो रात को आए थे, सुबह 3 बजे चले गए। दूसरे भाई लोग इधर जो बैठे थे बोले हम 2 बजे यहाँ से गए, कोई रिपोर्ट वाला आया नहीं तो हमारी कहाँ से रिपोर्ट कर ली इन्होंने।
यहाँ मौजूद फैमिलीज़ अपने प्यारों की मैयतें लेने के लिए बेताब हैं। इनमें से एक से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमें घर से मुसलसल फ़ोन आ रहे हैं कि कब हम पहुँचेंगे, लेकिन अभी तक हमें कुछ अंदाज़ा नहीं है कि कब जाएँगे। और वो हुकूमत से भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि DNA सैम्पलिंग और टेस्टिंग का जो अमल है वो तेज़ किया जाए, ताहम इंतज़ामिया जो है उनका ये कहना है कि इसमें कम अज़ कम जो वक्त लगेगा वो भी 10 दिन लग सकते हैं।
जानकारी दे रही थी बीबीसी उर्दू संवाददाता फरहत जावेद। वक्त है विवेचना का। पास रहकर भी कितने दूर हैं भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त TCA राघवन की एक किताब प्रकाशित हुई है, द पीपल नेक्स्ट डोर, द क्यूरियस हिस्ट्री ऑफ इंडियाज रिलेशन विद पाकिस्तान। इसमें उन्होंने पिछले 70 सालों में भारत और पाकिस्तान के बदलते रिश्तों का विश्लेषण किया है। आज की विवेचना में रिहान फजल नजर दौड़ा रहे हैं 1947 से लेकर 1965 तक के भारत पाकिस्तान संबंधों के उतार चढ़ाव पर।
जगा के जंग का तूफान जमीन नानक से, उठे हो आग लगाने कबीर के घर में, गुलाम तुम भी थे कल तक, गुलाम हम भी थे, नहा के खून में आई थी फसले आजादी, अभी शगुफों ने खोली नहीं है आंख अपनी, अभी बहार के लब पर हंसी नहीं आई। तुम आओ गुलशन लाहौर से चमन बरदोश, हमारे सुबह बनारस की रोशनी लेकर, हिमालया की हवाओं की ताजगी लेकर, और उसके बाद ये पूछें।
1965 में जब अली सरदार जाफरी ने ये नज्म लिखी थी, तब दोनों मुल्कों में इसकी बहुत वाहवाही हुई थी। अगर आज इसे किसी सार्वजनिक मंच से पढ़ा जाए तो शायद बहुत से लोग इसे अप्रासंगिक कहें। भारत और पाकिस्तान के बीच दूरियों की नींव 1947 में दोनों देशों के विभाजन के साथ ही रख दी गई थी। विभाजन के बाद हुए सांप्रदायिक उन्माद का न कोई मजहब था न कोई जात। उन दर्दनाक दिनों में आंख के बदले आंख, हत्या के बदले हत्या, बलात्कार के बदले बलात्कार ने दोनों आजाद हुए देशों के संबंधों में ऐसा जहर घोला जिसकी कड़वाहट आज तक कम नहीं हुई है। मशहूर लेखक डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा,
15 अगस्त 1947 को जब लाहौर से आने वाली 10 डाउन एक्सप्रेस अमृतसर के स्टेशन पर आकर रुकी तो स्टेशन मास्टर छेनी सिंह की आंखों के सामने जो दृश्य आया उसे देखकर उन्हें सांप सूंघ गया। हर डिब्बे की सारी खिड़कियां खुली हुई थीं, लेकिन उनमें से किसी के भी बाहर कोई चेहरा झांकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। एक भी दरवाजा नहीं खुला, एक भी आदमी ट्रेन से नीचे नहीं उतरा। छेनी सिंह ने आगे बढ़कर एक झटके के साथ पहले डिब्बे का दरवाजा खोला और एक क्षण में उनकी समझ में आ गया कि उस रात 10 डाउन एक्सप्रेस से अमृतसर में एक भी शरणार्थी क्यों नहीं उतरा था। वो लाशों की गाड़ी थी। उनके सामने डिब्बे के फर्श पर इंसानी जिस्मों का ढेर लगा हुआ था। किसी का गला कटा हुआ था, किसी की खोपड़ी चकनाचूर थी, किसी की आंतें बाहर निकल आई थीं। हर डिब्बे में यही दृश्य था। अंतिम डिब्बे तक पहुंचते पहुंचते उन्हें मतली होने लगी थी। उन्होंने पीछे मुड़कर एक बार फिर ट्रेन पर नजर डाली। हत्यारों ने अपना परिचय देने के लिए अंतिम डिब्बे पर मोटे मोटे सफेद अक्षरों में लिखा था, ये पटेल और नेहरू को हमारी तरफ से आजादी का तोहफा है।
शायद इसी को देखकर फैज अहमद फैज ने अपनी वो मशहूर नज्म पढ़ी,
ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार, के मिल जाएगी कहीं न कहीं फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल।
पश्चिमी भारत में एक रियासत थी जूनागढ़, जिसके नवाब मुसलमान थे, लेकिन 90% से भी अधिक आबादी हिंदू थी। नवाब ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया। द पीपल्स नेक्स्ट डोर, द क्यूरियस हिस्ट्री ऑफ इंडियाज रिलेशन विद पाकिस्तान के लेखक और पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रहे TCA राघवन बताते हैं,
जूनागढ़ में नवाब मुसलमान थे पर 99% जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी। ये स्वाभाविक था कि जो मेन पॉपुलेशन है वो इंडिया में ही रहना चाहते थे। जो नवाब थे, नवाब ऑफ जूनागढ़, वो थोड़े सेंट्रिक से कैरेक्टर थे और उनको ये लगा कि नहीं, मैं पाकिस्तान से ज्वाइन होना चाहता हूँ, पर किस तरह ज्वाइन होते ये क्लियर नहीं था क्योंकि उसका कोई भी हिस्सा पाकिस्तान से लगा हुआ नहीं था। पर अंत में ये एक्सेशन एक्सेप्ट कर लिया गया और उसके खिलाफ जूनागढ़ में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला कि हम क्यों पाकिस्तान का हिस्सा बने। नवाब को पता लगा कि भारतीय सेना या भारतीय पुलिस अंदर आने वाली है, तभी वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। वो थोड़े इसेंट्रिक से कैरेक्टर थे। वो अपने साथ में उनके जो परिवार वाले जो गए, पर साथ में वो 100 कुत्ते भी साथ ले गए। और वो जब प्लेन का जब दरवाज़ा खुला, वहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर तैयार थी और मिनिस्टर्स और सीनियर ऑफिशियल्स उनको रिसीव करने आए थे, पर जब प्लेन का दरवाजा खुला तो सबसे पहले बाहर कुत्ते भाग के निकले क्योंकि वो भी 2 घंटे से बंद थे।
जूनागढ़ के ठीक उलट कश्मीर में स्थिति दूसरी थी। वहां के महाराजा हिंदू थे जबकि घाटी में रहने वाले अधिकतर लोग मुसलमान थे।
पर कश्मीर में सबसे बड़ा जो फर्क था, कश्मीर के अपना एक पॉलिटिकल प्रोसेस था और उसमें शेख अब्दुल्ला बहुत ही महत्वपूर्ण थे। शेख अब्दुल्ला की सोच ये थी कि मैं पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सकता क्योंकि मुझे खुद अपना ऑटोनोमस स्टेटस चाहिए, और दूसरा उनकी खुद भी सोच सेकुलरिज्म की तरफ थी। अब महाराजा क्या सोचते थे ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, पर ये जरूर है कि उन्होंने एकदम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं किया। इसी बीच में पाकिस्तान से कबायली और उसमें पाकिस्तान फौज के एलिमेंट्स भी शामिल थे काफ़ी तादाद में, उनका एक इन्वेजन शुरू हुआ। और जब ये कबायली श्रीनगर के पास तक पहुंचे तब उसी मौके पर जो महाराजा थे जम्मू और कश्मीर के, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया इंडिया ज्वाइन करने के लिए, और उसी से भारत पाक का पहला युद्ध शुरू हुआ।
भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत बड़ा विवाद तब पैदा हुआ जब ये तय किया गया कि रिजर्व बैंक में जमा पैसे में से 75 करोड़ रुपए भारत पाकिस्तान को देगा, लेकिन भारत ने 20 करोड़ रुपए देने के बाद बाकी 55 करोड़ रुपए देने से इनकार कर दिया।
जो डिवीजन एग्री हुआ था वो तो भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के आपस में बीच में मंजूर हो गया था, पर बीच में क्योंकि कश्मीर में युद्ध शुरू हुआ तो नई दिल्ली में तब काफी लोगों का ये कहना था जब आप लड़ाई कर रहे हैं, जब आपके जवान वहाँ पर मारे जा रहे हैं, तो ऐसे मौके में आप फंड्स कैसे रिलीज़ कर सकते हैं, और जब आप जानते हुए कि इन फंड्स का काफ़ी बड़ा हिस्सा आर्म्स के लिए या एमुनिशन के लिए या मिलिट्री स्टोर्स के लिए यूज़ किया जाएगा, तो इस वजह से भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि नहीं, ये फंड्स हम रिलीज़ नहीं करेंगे जब तक ये युद्ध चलता रहेगा। इसके खिलाफ महात्मा गांधी एक फास्ट पर गए कि नहीं, ये फंड्स रिलीज़ करना आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन है और आपको ये फंड्स रिलीज़ करने चाहिए, और क्योंकि महात्मा गांधी ने फास्ट किया था, फास्ट अनटू डेथ, तो भारत सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा।
पाकिस्तान की संविधान सभा के आरंभिक भाषण में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने वहाँ के अल्पसंख्यकों, हिंदू और सिखों को विश्वास दिलाया कि उन्हें अपने धर्म का पालन करने की आजादी होगी।
Let us impress the minorities by our words, deed and thought that as long as they fulfill their duties and obligations as loyal citizens of Pakistan, they have nothing to fear.
हमें अल्पसंख्यकों को अपने शब्दों, कामों और विचारों से आश्वस्त करना चाहिए कि जब तक वो पाकिस्तान के वफादार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे, उन्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम उस दौर की शुरुआत कर रहे हैं जब न कोई भेदभाव होगा और न ही दो समुदायों में कोई फ़र्क किया जाएगा। हमारी शुरुआत उस बुनियादी उसूल से की जा रही है कि हम एक राष्ट्र के समान नागरिक हैं।
इस पर सरदार पटेल की प्रतिक्रिया थी कि पाकिस्तान के नए नागरिकों को उससे निराशा ही हाथ लगेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस नेतृत्व ने जिन्ना के साथ किसी भी तरह का सहयोग करने से इनकार कर दिया। माउंटबेटन ने 27 जून 1946 को ब्रिटिश सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में लिखा,
पटेल ने ब्रिटिश राज की 7 प्रिंटिंग प्रेसों में से एक भी पाकिस्तान को देने से साफ इनकार कर दिया। जब मैंने उन्हें कुछ दरिया दिली दिखाने के लिए कहा तो उन्होंने झल्ला कर जवाब दिया, पाकिस्तान से किसने कहा था कि वो भारत से अलग हो जाए। जब जिन्ना ने जुलाई के मध्य में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों को पाकिस्तान का संविधान लिखने के लिए दिल्ली बुलाने का प्रस्ताव किया तो कांग्रेस के नेता इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। नेहरू और उनके साथियों ने मुझसे साफ साफ कह दिया, हम किसी भी हालत में पाकिस्तान संविधान सभा की बैठक दिल्ली या उसके आसपास भी नहीं होने देंगे।
उधर हैदराबाद के निजाम ने भी भारत के साथ विलय से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, 21 अगस्त 1948 को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के आक्रामक रवैये के खिलाफ बाकायदा शिकायत की।
हैदराबाद में सबसे बड़ी मुश्किल ये हुई कि निज़ाम की इंटरनल पॉलिटिकल पोजीशन बहुत वीक हो गई। कुछ रेडिकल्स ने वहाँ पर पूरे सिस्टम पर अपना कब्जा कर लिया और इसके वजह से हैदराबाद स्टेट के अंदर काफ़ी सिविल टेंशन, सिविल स्ट्राइफ और स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। शायद नवाब हैदराबाद ये चाहते रहे होंगे कि वो ना हिंदुस्तान में जा हो क्या हिस्सा हो, ना पाकिस्तान का हिस्सा हो, वो अपना भी कोई ऑटोनोमस स्टेटस बनाए रखें। हालांकि उसकी फीजिबिलिटी बहुत कम थी, क्योंकि जो हैदराबाद स्टेट का अगर आप नक्शा देखें उस समय का, तो उसका कोई भी एक्सटर्नल बाउंड्री नहीं थी, वो पूरी तरह चारों तरफ से ब्रिटिश इंडिया से घिरा हुआ था। उधर सिविल स्ट्राइफ, सिविल ब्रेकडाउन की वजह से इंडियन पुलिस एक्शन हुआ और उसके इमीडिएटली बाद नवाब हैदराबाद ने यह अपना करार घोषित किया कि मैं हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाऊंगा।
50 के दशक की शुरुआत में 82 हत्याएं करने वाले सौराष्ट्र के एक डाकू भूपत को जब भारतीय पुलिस ने खदेड़ा तो वो सीमा पार कर पाकिस्तान चला गया और वहीं बस गया। बाद में 1960 में इस पर फिल्म बनी जिसमें तेलुगु देशम के नेता एनटी रामा राव ने भूपत डाकू की भूमिका निभाई।
इसके बारे में मैंने एक बार एक फाइल देखी थी पुरानी, डीक्लासिफिकेशन के लिए आई थी, मतलब इस फाइल को नेशनल आर्काइव्स भेज दिया जाए। किस्सा इस तरह का है कि ये डाकू था और इसके पीछे पार्टीशन के पहले भी केसेस थे और 1947 के बाद इसकी भी एक्टिविटीज कुछ बढ़ गई और आखिर में जब इसके पास और कोई चारा रहा नहीं तो यह पाकिस्तान भाग गया। वहां पर उसको अरेस्ट कर लिया गया। जब जेल के टर्म खत्म होने लगा तब सवाल उठा कि भूपत डाकू के साथ क्या किया जाए। पाकिस्तान में कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, हम इसको वापस कैसे कर सकते हैं। अब उसका टेक्निकल रीजन ये दिया गया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, पर इसमें भूपत ने भी शायद किसी काबिल वकील को रखा और उसने उस पूरे किस्से को एक अलग ट्विस्ट दिया और ये कहा कि आप ये कहो कि मैं एक फ्रीडम फाइटर था और सौराष्ट्र के स्टेट्स पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहते थे, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फोर्स यूज़ करके उनको इंडिया का हिस्सा बनाया और आप उन स्टेट्स के की तरफ से एक फ्रीडम फाइटर का रोल निभा रहे थे और यही उसका डिफेंस रहा पाकिस्तान में। उसके बाद वो हिंदुस्तान तो नहीं लौटाया गया, पाकिस्तान में ही रहा, वो कन्वर्ट कर लिया, अपने आप को मुसलमान कहने लगा और शायद 2002 या 2003 में उसकी मौत हुई।
1960 में जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान गए, उन्होंने सिंधु जल समझौते पर दस्तखत किए, लेकिन तब तक भारत पाकिस्तान संबंधों में गिरावट का दौर शुरू हो चुका था। 1965 में दोनों देश युद्ध के मोर्चे पर थे। इस लड़ाई में ईरान और तुर्की के साथ इंडोनेशिया खुले तौर पर पाकिस्तान के समर्थन में आया, जबकि मलेशिया ने भारत का साथ दिया।
जब भारत पाकिस्तान जंग का मामला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंचा तो मलेशिया के जो एम्बेसडर थे यूएन में, उन्होंने पाकिस्तान की बहुत ही सख्त क्रिटिसिज्म किया कि ये जंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जंग की जिम्मेवारी आपकी है, क्योंकि आपने ही सबसे पहले घुसपैठिए भेजे कश्मीर में और इसी से ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ। पाकिस्तान ने इतनी कड़ा ऑब्जेक्शन था इसके बारे में कि उन्होंने मलेशिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिए और उसी टाइम इंडोनेशिया में भारत के खिलाफ बहुत स्ट्रांग ओपिनियंस थे और हमारे जो एम्बेसी था उसके ऊपर लोगों ने बाद जाके डेमोन्स्ट्रेशंस भी किए।
दिलचस्प बात यह है कि आज वही मलेशिया कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ये बताता है कि विदेश नीति में कोई चीज हमेशा स्थिर नहीं होती। रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
और विवेचना के बाद अब बारी है खेल समाचारों की। रेखा सामने है।
राफेल नडाल की हम बात करते हैं, टेनिस टूर्नामेंट की तरफ चलते हैं। स्टान वावरिंका और नोवाक जोकोविच ने काइल एडमंड को हराकर पेरिस मास्टर टेनिस टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। नडाल ने तीन बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन वावरिंका को 6-4, 6-4 से मात देकर उनके खिलाफ जीत का रिकॉर्ड 19-3 कर दिया है। 12 बार के फ्रेंच ओपन विजेता नडाल अब क्वार्टर में 2008 के चैंपियन जो विल्फ्रेड सोंगा से भिड़ेंगे, जिन्होंने जर्मनी के जॉन लेनार्ड स्टफ को 2-6, 6-4, 7-6 से शिकस्त दी। 16 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन जोकोविच ने ब्रिटेन के काइल एडमंड को 7-6, 6-1 से मात दी है और सातवें नंबर के खिलाड़ी स्टेफनोस सिटसिपास से भिड़ंत पक्की की है, जिनका उनके खिलाफ रिकॉर्ड है 2-1 का।
बहुत बहुत शुक्रिया। और कार्यक्रम में इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार सुनने का वक्त एक बार फिर से।
बीबीसी समाचार। झारखंड में 81 सीटों वाली विधानसभा में 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक 5 चरणों में चुनाव होंगे। वोटों की गिनती 23 दिसंबर को होगी। उच्चतम न्यायालय की ओर से गठित पैनल ने दिल्ली और एनसीआर में खतरनाक प्रदूषण को देखते हुए हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान किया है। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल भारत दौरे पर आई हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। एक वरिष्ठ चीन अधिकारी ने संकेत दिए हैं कि चीन हांगकांग पर शासन के अपने तरीके में कुछ बदलाव कर सकता है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी भारतीय समय के मुताबिक सुबह 6:30 बजे कार्यक्रम नमस्कार भारत में। आज स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान, मोहनलाल शर्मा को अपने समस्त सहयोगियों के साथ विदा दें। नमस्कार।